जाति का जो भी बीज होता है उसमें मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं, क्या मेल भी होता है फीमेल, जैसे बिंदु आत्मा है ना, तो बिंदु आत्मा मेल भी हो सकती है और कभी फीमेल भी हो सकती है। ऐसे ही हर जाति का जो बीज है वो जब बोया जाता है तो फीमेल के रूप में भी पैदा हो सकता है और मेल के रूप में भी पैदा हो सकता है। तो पपीता का भी जो बीज है वो मेल के रूप में कोई पैदा होता है, जो उसमें सिर्फ फूल ही फूल आते हैं, उसमें फल आते ही है, और एक फीमेल होता है उसमें फल आते हैं खूब, तो उसे फीमेल कहा जाता है। लेकिन वो तब आएंगे जब दो चार मील के दायरे में कोई न कोई मेल वृक्ष खड़ा हुआ होगा। अगर नहीं होगा दो चार मील के दायरे में कोई वृक्ष तो पपीता का फल भी फल नहीं देगा, तो वो दूर से ही पराग पपीता फीमेल पपीता है, पपीते का वृक्ष वो दूर से पराग खींच लेता है, ऐसे ही खींच लेता है जैसे लक्ष्मी नारायण जो संगम युगी है वो आपस में मिलकर के नहीं रहते, दूर दूर है लेकिन मन दोनों का मिला हुआ है, क्या लक्ष्मी के ऊपर है उस नारायण की छाप दिल पर पड़ी हुई है, ये शिव बाबा का स्वरूप है। अच्छा, तो वो बुद्धियों को जुटा हुआ होने के कारण वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश हो जाए, राधा कृष्ण जो बच्चे पैदा होंगे वो सेकंड ग्रेड के होंगे, क्या फर्स्ट ग्रेड के हुए लक्ष्मी नारायण संगम युग के, वो शिव बाबा की औलाद है, कौन लक्ष्मी नारायण जो है वो शिव ज्योति बिंदु शिव है सुप्रीम सोल की औलाद, और वो जो राधा कृष्ण होंगे वो सेकंड ग्रेड के बच्चे हुए, जो राधा कृष्ण बच्चे पैदा होंगे वो दृष्टि की आकर्षण से पैदा होंगे, दृष्टियों की पावर से पैदा होंगे, या सतयुग में दृष्टि की पावर से बच्चे पैदा होते हैं, मुख के प्यार से बच्चे पैदा होते हैं, देवताओं विष्णु का चित्र है देवताओं को भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, देवताएं मुख समान मुख में देवताओं को दिखाया गया, माने वहां दृष्टि इंद्रियों का प्यार नहीं होता, जल्दी इंद्रियों का प्यार नहीं होता, वहां जो श्रेष्ठ इंद्रिया है उनका प्यार होता है, तो जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण उनको उसकी भी दरकार नहीं, क्या वो इंद्रियों की भी दरकार नहीं, क्यों क्योंकि वो चढ़ती कला के हैं, कौन संगम युगी लक्ष्मी नारायण, और जो राधा कृष्ण पैदा होंगे सतयुग में वो उतरती कला के होंगे या चढ़ती कला के होंगे, वो जब से पैदा होंगे और जब से उनका आपस में कनेक्शन होगा तो वो उतरती कला के होंगे, दृष्टि से दृष्टि भी शरीर का अंग है ना, देह का अंग है ना, तो देह का सुख लेने से आत्मा नीचे धीरे धीरे उतरना शुरू होता है, द्वापर युग में तेजी से नीचे उतरती है क्योंकि दृष्टि इंद्रिया है, और सतयुग में धीरे धीरे नीचे उतार होता है क्योंकि आंखें सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है, फिर भी उतार तो होता है, तो संगम की लक्ष्मी नारायण में और सतयुग की लक्ष्मी नारायण में ये खास फर्क है, इसलिए वो बात समझाने के लिए इस दुनिया में भी एक पौधा ऐसा है जिसको मिसाल दिया गया, मोर का भी मिसाल दिया जाता है, मोर जो है वो विकारी नहीं बनता है, दृष्टि इंद्रियों से विकृति नहीं पैदा करता है, वो मोरनी जो है वो मोर के नाचते समय उसका आंसू की है, क्या आंसू तो उसका नाम लिया जाता है, तो श्रेष्ठ इंद्रिय से वहां यहाँ इस दुनिया में पैदाइश हो सकती है, तो क्या सतयुग में श्रेष्ठ इंद्रियों से पैदाइश नहीं हो सकती, हो सकती है, इसलिए है कि आप पांडवों को देश निकाला मिलता है तो पांडव कहे जाते हैं, अगर आपको निकाल के बाहर न करें तो आप पांडव कैसे कहे जाएंगे, आपको पांडव बनना है कि नहीं,
तो अच्छा है,
ठीक है, ज्ञान अच्छा है, तो आप कहेंगे निकलो यहाँ से बाहर, इसका मतलब हम पिछले जन्म में राजा थे तो हमने अपनी राजाई से तुमको निकाल के बाहर कर दिया होगा, निकलो यहाँ से बाहर। राजा तो बड़े अहंकारी होते, तो हमने अहंकार में आकर के तुमको अपने राज्य में से बाहर खदेड़ दिया, तो तुमने अपने आश्रम की चार दीवारी से हमको निकाल के बाहर कर दिया, और आश्रम की चार दीवारी में क्या भीख मांग मांग करके तुमने आश्रम की चार दीवारी बनाई शिव बाबा जी नाम पर, और उससे तो हमें धक्का दे रहे, तो कोई बात नहीं, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया, हम तो बड़े खुश हैं। शंकर का कोई पार्ट नहीं, शंकर
तो
नहीं
तो
यार
कर्मेंद्रियों से बताया
से
और उसने हमारी मुरलियाँ चुरा लिया, चुरा करके नहीं, और वो ज्ञान देता है प्रमुख हमारी निकला हमारी पार्टी में से, और जाकर ने चुप्पी से पार्टी बना ली, और वो ज्ञान जाकर के ना सुनाता हमारी मुरलियाँ, उनके पास मुरलियाँ ही कहाँ से, और हमारे अगर तुम्हें इतना ही शौक है ज्ञान देने को तुम्हारे सेंटर करना था, और कहीं दूर जाके हमने कही थी हम तो बाप का पर्चा हम तो देंगे, सुनो चाहे मत सुनो, तो बोले अगर इतना ही शौक है सुनाने के लिए तो हमारे लिए निकालो जाकर सड़क पर हमारा ही सेंटर थोड़ी बचा है, जाके नहीं रैली निकालो, मैंने ये तो आप लोगों का काम है रैली निकालनी, आज नहीं सुनोगे तो मैंने कल तो भगवान है तो वो तो प्रतीत हो जाएंगे, मुझे तो वो तो मानोगे तुम राधी गैर राधी से मानना पड़ेगा,
ये तो कागज की मुरलियाँ है, कागज की मुरलियों को तो बाबा ने मुरली में ही बताया हुआ है, थर्ड क्लास है मुरली, कागज की मुरली सुनना और दूसरों को सुनाना ये है थर्ड क्लास मत, बाबा ने तो मुरली में बताया है तो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास माल लिया करो, सेकंड क्लास माल है टेप रिकॉर्ड से सुनना, और गुड सेकंड क्लास अब निकल पड़ा टीवी से देखना है, पिछला चित्र भी दिखाई पड़ता है, और फर्स्ट क्लास है तो बाबा के मुख से डायरेक्ट बैठ कर दूसरे, तो हम तो फर्स्ट क्लास मिलता है, हम तुम्हारे कागज मुर्तियाँ क्यों पढ़ेंगे,
शंकर का कोई पार्ट नहीं, पार्ट नहीं है तो मुझे त्रिमूर्ति को रखा क्यों है,
त्रिमूर्ति
तो बुलाते हैं, क्या कहते हैं अगर बीके वाले का सेटर में पहुंच जाओ ना, अगर वो हम लोगों को देख के एडवांस पार्टी के तो बोलने का मौका ही नहीं देते, एक बार तो हम लोग गए फतेहाबाद तो वो गाने ही गाते रहे एक घंटा तक, तो वो हमें देख के गाने ही गाते रहे, फिर उसके बाद फिर हमने मतलब उसके बाद क्या किया, जो कार्टून से एक किताब निकली है उसमें ब्रह्मा बाबा जी और गाने वगैरह सारी दी हुई है, तो वो पढ़ने लगी उसमें, तो वो बोली कि 1969 को ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन बता दिया था मरण दिन, बोल दिया भी जन्मदिन, तो मैंने बीच में बोला कि बहन जी जरा दोबारा पढ़िए ये 1969 तो 18 जनवरी तो उनका मृत्यु दिवस है, जन्म तो बोली आप चुप बैठे रहिए बोलने की कोई जरूरत नहीं, तो ऐसे उसमें एकदम हड़कम मच गया सारी माता है, और हमको उल्टी सीधी गाली देने लगी और भाव भाव यहाँ से भागो
जैसे सिद्धार्थ जो है और उनको उनके पिताजी सिद्धार्थ को और विदेश में ढकेल लेते हैं, विदेश में ढकेल लेते हैं, अपने देश से देश निकाला दे देते हैं, सुदर्शन महाराज अपने बेटे को
तो
देश निकाला दे दिया, तो जब वो चीन या जापान देश में गए तो क्या ये देश या ये धर्मखंड पहले से ही स्थापित हो जाता है, अथवा ये सतयुग में जब गद्दीवार नारायण प्रत्यक्ष होते हैं तब ये धर्मखंड स्थापन होते हैं,
जब बच्चा पैदा होना होता है ना,
अच्छा,
तो चार पांच महीने का जड़ पिंड होता है, उसमें आत्मा नहीं होती पेट में, क्या होता है जड़ पिंड, हाथ पांव हलते डुलते नहीं है, सिर्फ जड़ पिंड तैयार होता है, होता है ना, फिर बाद में उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो ऐसे ही ये जितने भी धर्मखंड है वो पहले तैयार होते हैं, उसमें कोई आत्मा मनुष्य आत्मा प्रवेश नहीं करती, पहले वो जड़खंड जो है वो समुद्र के अंतराल से ऊपर ऊपर आ जाए, पहले तो सिर्फ भारत ही देश था, वो तो सबका माई बाप है, फिर पहले पहले आता अरब खंड ऊपर, तो इस्लाम धर्म वहां स्थापन होता है, इस्लाम धर्म की इब्राहिम की आत्मा वहां पहुंचती है, ऐसे ही फिर होता है बौद्धिक खंड स्थापन, तो चीन जापान जो है ये बाद में फिर समुद्र से ऊपर आते हैं, और वर्षों तक ऐसी जड़ धर्मखंड पड़ा रहता है, फिर बाद में वो धर्म पिता की आत्मा वहां पहुंचती है और धर्म की स्थापना कर देती है। वो धर्मखंड पहले से ही तैयार हो जाता है, समुद्र से ऊपर आ जाता है।
हाँ
जी
अभी आपने मोर के बारे में बोला था जो
मोर,
हाँ तो सुनते तो हम भी रहते थे बचपन में, लेकिन मैं ट्रैक्टर चलाता था आज से करूँ 17-18 साल पहले, अब भी चलाता हूँ। तो मैंने वहाँ मोर को और दो चार लोग और भी थे मेरे साथ भी थे दो लोग, तो उन्होंने देखा था जैसे वैसे वो पंछी करते हैं वैसे देखा था मैंने,
दूसरे पक्षियों को करते हुए देखा तो वो भी करना शुरू कर दिया। हाँ।
तो अब देखते हैं हम तो अब जैसे मोर देखा है, हमने अपने खेतों पर जाते हैं। हाँ। तो अब मोर अकेला ही नाचते रहता है काफी दूर तक, अकेले अकेले मोर नाचते हैं, लेकिन उनके साथ जोड़ी वो होती है उनकी, वो कोई पास ही नहीं रहता है अब तो।
हाँ, ठीक है।
इतना परिवर्तन आ गया, पहले झुंड का झुंड रहती थी उनके पास, अब कोई मोर ही उनके पास नहीं जाती।
नहीं नहीं, जिस समय नाचता है उस समय वो भाव उनके अंदर नहीं आता है, वो तो ज्ञान डांस है ना।
आप मोर
सुने तो, भारत में मोर जो है वो वर्ल्ड नेशनल बर्ड माना जाता है कि नहीं है? माना जाता है। अरे कोई कारण होगा नेशनल बर्ड मोर ही क्यों माना जाता है, नीलकंठ क्यों नहीं माना जाता, कोई कारण होगा ना। तो कारण यही है कि आखिरी जन्म में भी जो ये मोर पक्षी अभी एक मिसाल बनी हुई है कि मोर जब डांस करेगा तो वो तो स्थूल डांस करता है। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में जो पवित्रता को धारण करने वाली विशेष आत्मा है, जिसे कृष्ण का कृष्ण के रूप में दिखाया जाता है, वो मोर पंख सर के ऊपर दिखाते हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि वो आत्मा ज्ञान डांस करने वाली है। जो ज्ञान डांस जिस समय सुना किया जाएगा उस समय देवान आएगा, कोई नहीं उस समय देवान नहीं आता आएगा है? बोलो ना, जब ज्ञान डांस करता है कृष्ण या शिवभागवत करते हैं, कृष्ण का नाम दे दिया जाता है, तो उसी को देवान आता है क्या? उस समय देवान नहीं आता है, लेकिन बाद में जब अकेले दुखीले होते हैं तो डांस वो देवान आता है। तो ऐसे ही जब मोर डांस करता है तो उस समय मोरनी उसके पास नजदीक नहीं आती। और रही तुमने ये तुम्हारी आंखों ने देखा, तो वो तो तुमने ये देख लिया जैसे जगन्नाथ के मंदिर में वो चित्र दिखाए गए देवताओं के, गंदे गंदे चित्र दिखाए गए ना है? लेकिन उनकी अंदरूनी हालत क्या है सो तुमने देखी क्या है? वो नहीं देखी। तुमने शिवलिंग देख लिया कि हाँ जलाधारी में रखा हुआ है, तो तुमने समझा कि शिव भी ऐसी गंदी हरकत करता होगा, गंध में रखा होगा, गंध में रखने का कार्य करता होगा, तो हम घंट बजा देते हैं, हे शिव बाबा जग जाओ, हे पार्वती जग जाओ, हम आ रहे हैं है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी आंखों का भ्रम है। जो मोर पक्षी की पूंछ ही इतनी लंबी है कि डांस जिस समय करेगा उस समय तो वो स्टेज ही कुछ दूसरी होती है, और जब डांस नहीं करता है तो पूंछ नीचे होती है। तो जो नीचे पूंछ है, इतनी लंबी पूंछ है, वो ऐसी क्रिया कर ही नहीं सकता। और फिर दूसरी बात, तुम यहाँ मुरली सुनते हो ना? मुरली सुनते हो नहीं? डायरेक्ट एडवांस में आए या ब्रह्म कुमारी में से होकर के गुजर के आए?
डायरेक्ट
आए हैं? ब्रह्म कुमारी में से नहीं आए? ब्रह्म कुमारियों से ज्ञान सुन करके आए कि नहीं?
थोड़ा घर पर ही मिला था, मतलब ज्ञान
थोड़ा बहुत सुना ना। तो ब्रह्मा कुमारियों से जहाँ द्वारा फाउंडेशन पड़ा है, वहाँ जो मुरली सुनाई है बाबा ने, उस मुरली में ही बाबा ने बोला हुआ है मोर मुरनी के बारे में। कोई बिना फाउंडेशन की बात नहीं बोली जा रही, यहाँ तो जो कुछ सुनाया जाता है मुरली के अनुसार सुनाया जाता है या शास्त्रों की बात सुनाई जाती है? मुरली की बात सुनाई जाती है। तो मुरली में ही जब बाबा ने बता दिया, पहले तो यहाँ लोग जितने भी बैठे हुए हैं उनका फाउंडेशन मुरली का पक्का होना चाहिए। मुरली हमारी लाठी है, मुरली अगर विश्वास नहीं है तो इस ज्ञान में चलने से कोई फायदा नहीं है, फिर वो जो साकार पाठ है वो भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। साकार पाठ बुद्धि में बैठ ही कर सकता है जब मुरली का फाउंडेशन पक्का हो। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बोला हुआ है ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ब्रह्मा के ब्रह्म वाक्य झूठे नहीं हो सकते। हो तो ब्रह्म वाक्य वेदों को कहते हैं, वो वेद तो सब मनुष्यों ने लिखे हैं। भाई यहाँ तो ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाया? शिव ने सुनाया, वो झूठा नहीं हो सकता। अगर देखा भी है कहीं तो आंखों का भ्रम ये है कि ये इस तरह देख लिया जैसे कि कोई खेल पार कर रहा है। जब दूसरे पक्षी जंगल में खेल पार कर रहे हैं तो मोर भी देखता है कि खेल पार कर रहे हैं, तो क्या देखा तूने? वो खेल पार नहीं कर सकते। खेल पार कर सकते हैं लेकिन वो अंदरूनी क्रिया को उनकी वो बोध ही नहीं है।
अष्ट
देव जो है वो अष्ट देवों को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि वहाँ जो ऊपर से आने वाली आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों को कंट्रोल करती है। जिनमें प्रवेश करते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं ना, और आधार मूर्तों को जो जन्म देने वाले बीज है, जो जन्म देने वाले बीज है उनके कंट्रोल में वो आधार मूर्त नहीं है। जैसे सिद्धार्थ में महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया तो सिद्धार्थ क्या शुद्धोधन राजा के कंट्रोल में आया? नहीं आया। भले तुम निकाल दो तो निकाल दो, निकल गए, लेकिन उनके कंट्रोल में नहीं था। उसे जो कुछ बोलना है, जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है सो किया, कंट्रोल में नहीं गए ना। तो वो तो हुई आसुरी सृष्टि, और यहाँ कौन सी सृष्टि हो रही? ईश्वरी सृष्टि हो रही। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा या वही क्रम चलता रहेगा? नहीं समझ में आया।
अष्ट देव
है बीज रूप आत्मा है, जो पहली पहली बीज है बाप के बच्चे। हाँ, और वो बाद वाले बीज है,
बाद वाले
पहले बाद वालों ने उनको कंट्रोल किया है। अब ये कंट्रोल होने वाले नहीं है अष्ट देव। इसलिए कहते हैं कि जो देवताएं होते हैं उनमें अपनी पावर नहीं होती, वो असुरों से अपनी पावर से जीत नहीं पा सकते। असुर पावरफुल हो जाते हैं और देवताएं कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान देवताओं को मिलता है तो देवताएं पावरफुल हो जाते हैं और असुर उनका कुछ भी नहीं होने। तो अभी अष्टदेवों को भगवान मिलता है तो उनकी पावर जास्ती हो जाती है, क्योंकि वो राजयोग सीखते हैं और वो असुर पहचान ही नहीं पाते भगवान के रूप को, इसलिए वो राजयोग की उतनी पावर ले नहीं पाते, इसलिए कमजोर हो जाते हैं। तो संघ में वो उल्टा हो जाता है।
तुमको
तो अभी बाबा की डायरेक्ट खबरें नहीं मिलती है कैसेट में?
कैसेट में
कैसेट में मिलती नहीं डायरेक्ट, कैसेट नहीं मिलती,
कैसेट में रोज ना मिलती,
कैसेट मिलती नहीं। क्यों पढ़ देते? वो तो थर्ड क्लास मान बताया बाबा ने मुझे, जो कागज के पत्ते से सुना और दूसरों को सुनाया क्या वो है थर्ड क्लास। इसलिए सेकंड क्लास आजकल ट्रेन में भी थर्ड क्लास खत्म कर दिया गया। कितने साल हो गए, अभी दो ही क्लास है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। अभी हो गया एसी एयर कंडीशन, तो कान में वो लगा लो क्या ईयरफोन, अब चुपचाप सुनते रहो, कोई नहीं सुनता है तो मत सुने। माताएं तो पुच्छा करने में होशियार होती है, थोड़ा पैसा बचा लिया और बचा के अपना मंगा लिया, कोई कहे तो कहाँ से लाए, हमको हमारी बहन जी ने दिया सुनने का। आप तो नहीं करो बाबा करके, बाबा तो कहते हैं देखो पति जो कमाई कमाता है ना उस पति की कमाई में आ रहा को तुम्हारा है, लेकिन अगर पति तुमको कुछ भी नहीं देता तो कम से कम तरीके से सब निकाल
सकते।
अच्छा नहीं खुश होता कोई बात नहीं, आप लोग खुश रहो,
बोलो कुछ भी बात तो मतलब मैं अपना ज्ञान अपने पास रखूं।
अच्छा ठीक है, हमारा ज्ञान हमारे पास, आगे चलकर तो अंदर से समझा करो। बाबा ने वरदान दे दिया कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, तो आगे चल करके ये सब हमारे स्टूडेंट बनकर के बैठने वाले, हम संदली में बैठे, हम इनको पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ बोले बोल दे तो आप अंदर से भी खुशी नहीं
है। भगवान आ रहा
है तो दुनिया मिल रही है ना, बस बात करना ज्ञान की बात है पहले को।
ये अष्टदेव ये पहला जो बारह का सूर्यवंशी ग्रुप है,
है?
क्या अष्टदेव इन बारह में से ही है?
बारह में से ही आठ।
अच्छा, और फिर चार का स्थान कहाँ पर है?
चार का स्थान बाद में है।
वो किस अष्टदेव के नाम से?
कोई भी धर्म पिता आता है, धर्म पिता बनकर के तो तीनों कार्य करता है ना,
तीनों कार्य करता है,
तो शिव बाबा तो तीनों कार्य पहले पहले करता है। कौन कौन से तीन कार्य?
स्थापना,
पालना,
पालना।
तो जो दो कार्य है वो तो सबको ही अच्छा समझता है, कौन से दो कार्य? स्थापना पालना तो सबको ही अच्छा समझता है, और विनाश, विनाश को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि विनाश होता है इम्प्योरिटी से, विनाश इम्प्योरिटी से होता है, और स्थापना पालना पवित्रता से होती है। तो स्थापना पालना करने वाले जो चार और चार आठ है वो श्रेष्ठ आत्मा है,
चार
वो, हाँ वो अष्टदेव है, और बाकी जो चार है वो जरूर नष्टदेव होते हैं, उनका काम होगा विनाशात्मक कार्य।
वो यज्ञ के आदि में जैसे भगवान बोला कि एक ही ट्रेन चलेगी अंत में, तो उसमें सबसे पहले जो निकलने वाले होंगे तो सूर्यवंशी निकल जाएंगे।
तो आदि में भी तो चली थी,
हाँ अंत में भी चलेगी वो,
आदि में चली थी कि नहीं?
चली थी,
चली थी, आदि में भी चली थी,
अंत में चलेगी, लेकिन सूर्यवंशी उसमें निकलने वाले निकल जाएंगे,
जो निकलने वाले होंगे तो निकल जाएंगे,
जो अंत में रह जाएंगे वो कैसे
पहुंचेगा? उनको क्या ऐसे ही निकल जाएंगे? उनको ट्रंकाल आएगा।
तो वो जो थोक जैसे आत्माएं रह जाएंगी जो, और धर्मों के बीज रूप, वो कैसे घर पहुंचेंगे?
उनके भी नंबर बनेंगे ना,
फिर यानी
नंबर बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
बनेंगे।
और दूसरे धर्म की मालाएं जो बनती है, और दूसरे धर्म के जो बीज है वो माला में आते हैं या नहीं आते हैं?
आते हैं,
तो वो बाद में पहुंचेंगे।
तो उस समय ट्रेन खत्म नहीं होगी, फिर बाद में चालू हो जाएगी किसी न किसी साधन से,
कहां चालू हो जाएगी?
यानी जब सब नष्ट हो जाएंगे तो फिर भी आत्मा कैसे पहुंचेगी फिर मानता हूँ?
अरे पहले पहली स्थापना की बात की जाती है कि दूसरी स्थापना की बात की जाती है? सन 76 की जो घोषणा की नई दुनिया बनेगी, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो पहले जिन आत्माओं के लिए बोला गया उनके लिए बोला गया, सबके लिए बोला गया? टू लेट का बोर्ड किसके लिए लगा? टू लेट के बोर्ड जो 76 के बाद लगा वो किसके लिए लगा? दो के अलावा सबके लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। ऐसे फिर होगा आठ के अलावा और सबके लिए का बोर्ड लग गया, आठ के लिए सब नहीं आ सकेंगे।
बाबा जो जैसे दिखाते हैं मंथन हुआ तो मध्यदाचल पर्वत कछुए पे दिखाते हैं धरा हुआ, और रस्सी से नाक की उससे करते हैं, तो वो कछुआ कौन है?
अरे कछुआ भी नहीं कर पाया, कछुआ जो है वो अपने इंद्रियों को समेट के बैठ जाता है। लोग ये समझते हैं ये तो बड़ा योगी है क्या, लेकिन ये है पानी का जानवर क्या? मुरली में बोला है रामकृष्ण जो है वो है रामकृष्ण जो है वो है धरणी का आधार लेकर के चलने वाले ज्ञान में क्या, वो जल का आधार लेकर के नहीं रहते हैं, और जो दूसरे अवतार हैं भगवान बन के बैठते हैं वो जल का आधार लेकर के रहते हैं, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है, ये सब जल का आधार लेते हैं। तो जो जल का आधार लेते हैं वो सब है आश्री भगवान, सिर्फ हम बन के बैठने वाले, और जो धरणी का आधार लेते हैं, धरणी माने कन्या माता है, उन कन्या माताओं के आधार पे चलते हैं ज्ञान में, कन्या माताएं हैं तो ज्ञान में ठीक चलेंगे, कन्या माताओं का आधार अगर हिल जाए तो उन्हें ज्ञान में चलना पसंद नहीं। माना यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है मान्यता होती है वहाँ देवता धर्म बनता है, और जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती मान्यता नहीं होती वहाँ देवता धर्म नहीं क्या बनता है? राक्षसी धर्म बनता है। तो रामकृष्ण की आत्माएं जो है वो कन्या माताओं को विशेष महत्व देने वाली, उनके आधार पर चलने वाली है ज्ञानी। और दूसरे जो जो है वो माताओं कन्याओं को आधार नहीं मानते। किसको मानते हैं आधार? ज्ञान जल को आधार। तो ज्ञान जल को आधार मानने वाला जो है वो है आर्य समाज। आर्य समाज लास्ट वाला नारायण है ना। तो जो लास्ट वाला नारायण है उसमें ये सिफ्ट है कि वो इंद्रियां समेट के बैठ जाएगा कछुए की तरह। अब राम वाली आत्मा कितने भी उसके ऊपर डंडे मारती रहे पीठ पर, वो अपने हाथ पांव बाहर नहीं निकालेगा, आंखें बाहर नहीं निकालेगा, जवाब कुछ भी नहीं देगा, सब डंडे सहन कर जाएगा। तो उसको कहते हैं कछुआ, कच्छ अवतार है। उस कच्छ अवतार के ऊपर सारा सतयुग खड़ा हुआ। सतयुग का ठाट किसके ऊपर खड़ा हुआ? वो कच्छ अवतार के ऊपर खड़ा हुआ। कमकलाओं को जो भी नारायण है वो सब उसके ऊपर उत्तर उत्तर होते हैं। वो कछुआ हो गया राधा।
बाबा जो माता के द्वारा फाउंडेशन पड़ा था भक्ति मार्ग का यज्ञ के याद में, सुनने सुनाने का, और बाप के द्वारा बीज बोने का, तो चार आत्मा तो जे हो गई, और जो कहते हैं पांच आत्मा बाबा और चुनी थी बाबा ने दूसरे दूसरे तरह की बीज रूप आत्मा।
पांच का मतलब क्या मतलब
निकाला? नौ आत्मा जो नौ ग्रहों के रूपों में बताते हैं आज भी चैतन्य आत्माओं के रूपों में उनकी पूजा।
कोई ग्रह थोड़े ही है।
अच्छा, तो वो चैतन्य आत्मा तो कैसे वो बताना?
वैसे ग्रह तो एक सूर्य हुआ जिसे वृक्षपति के रूप में दिखाते हैं, जो मुख्य ग्रह है वो वृक्षपति। ज्ञान सूर्य तो वास्तव में शिव है, और उसके बाद जो है वो चंद्रमा पृथ्वी। तो चंद्रमा तो ज्ञान चंद्रमा मानो में कौन है? कौन है ज्ञान चंद्रमा? राधा लेख राज की आत्मा। और पृथ्वी कौन है? जगदम्बा। जो भी कन्याएं होती हैं जब तक माता नहीं बनती है तब तक चौड़ी चकड़ी नहीं होती। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वैसे ही चौड़ी और चकड़ी होती जाती है। तो ये पृथ्वी माता का भी यही हाल है। ये पृथ्वी माता जो है पहले सिर्फ भारत देश भारत खंड था क्या, फिर बाद में जैसे जैसे दूसरे धर्म खंड आते जाते हैं वैसे ही पृथ्वी माता चौड़ी चकड़ी होती चली जाती है।
हनुमान जी ने सूरज मुख में लगा लो। हनुमान जी ने सूरज मुख में लगा लो। हनुमान जी की
वो जो कृष्ण वाली आत्मा है ना आइए के आदि में, वो दादा लेखराज थी कि नहीं? तो दादा लेखराज ने प्रजापिता को नाम निशान घूम कर दिया कि नहीं? चला गया मुंह में रख लिया। तो गीत बना दिया उन्होंने, बाल समय में भक्ति लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो। बाल समय माने वो ज्ञान सूरी का बालपन का स्वरूप था। कौन सा? यज्ञ के आदि में वो बालपन का ज्ञान सूर्य था। इसलिए कहता था उसमें तीखी रोशनी, तीखी रोशनी नहीं होती है। इसलिए वो हनुमान जी ने उसको क्या किया, अपने मुंह में खा लिया, रख लिया। उस समय तो रख लिया, लेकिन अब सूर्य तो सूर्य है। फिर अंदर से जब ज्यादा प्रचंड रूप धारण करेगा तो अड़सठ में क्या हुआ? फिर फट गया कि रह गया? फट गया तो बाहर निकल पड़ा।
हनुमान तो मतलब बुराइयों का हनन करने वाला, वो तो प्रजापिता को ट्राई कर दिया है।
हाँ, वो बुराइयों का हनन जो करने वाला है वो अकेला करता है या बच्चे को साथ लेकर करता है? तो बच्चा उसको तैयार करेगा पढ़ाई लिखाई पढ़ा के। अभी तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी हो रही है, एक बात ही उसकी समझ नहीं आ रही है। गीता तो भगवान मैं नहीं हूँ, शिव बाबा।
जो आपने एक तो होती है स्थूल गीता और एक होती है चैतन्य गीता। चैतन्य गीता में भी दो गीता हो गई, जिसमें एक तो मतलब एक गीता में कृष्ण की छाप पड़ती है वो स्थूल गीता हो गई, और जो दो गीता बताई है उसमें मतलब जगदम्बा कमल और वेदांती।
हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है?
नारायण
नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य है जीवन का क्या? जगदम्बा तो राक्षसों की भी अम्बा है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जगदम्बा बनना?
नहीं,
नहीं। वो जो राक्षसों की अम्मा है वो राक्षसों की दुनिया बनाएगी कि नहीं? जब राक्षसों की दुनिया बनाएगी तो नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? तो ये की आज मैं पहले ही बता दिया, वो है भक्ति मार्ग की गीता, सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली। और वो है वो सुना सुनाया बहुत कम लेकिन धारण धारण ज्यादा कर लिया। तो वही जो दो गीताएं थी आदि में, एक के ऊपर कृष्ण की छाप पड़ती है और एक के ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप ज्यादा पड़ती है। लेकिन वो दोनों गीताएं जो थी, दोनों माताएं थी, यज्ञ की आदि में तो थी, उसने अपने अंदर रखा, बाहर बात को बाहर खुद धारणा कर ली कि असलियत ये है, लेकिन ये भी को छोड़ा नहीं उस समय। बाद में जब वो राम वाली आत्मा छोड़ गई तो वो आत्मा भी छोड़ के चली गई। इसलिए कहते हैं विराम सीता फेल हो और जगदम्बा अंत तक सहयोग देती रही जब तक के वो मॉडल तैयार नहीं हो गया। क्या स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ कराची में? तो जो कराची में स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ वो असली स्वर्ग था या डुप्लीकेट स्वर्ग था? कौन सा स्वर्ग था? अरे वो डुप्लीकेट स्वर्ग था, ये असली स्वर्ग स्थापन हुआ है, डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ है। तो डुप्लीकेट जो स्वर्ग स्थापन होता है वो कृष्ण की गीता से होता है। आज की दुनिया में जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मेहरबानियां अटारियां विदेशों में दिखाई पड़ रही है, क्या क्या अलग सफाई दिखाई पड़ रही है, ये क्या है? ये डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ पड़ा है राक्षसों की दुनिया में, लेकिन ये असली स्वर्ग नहीं है। अंदर अंदर महल भरा पड़ा है, ईर्ष्या देश हसद काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अति भरी पड़ी है, तो उसको स्वर्ग नहीं कहेंगे। लेकिन असली स्वर्ग अभी स्थापन होने वाला है, जब स्थापन होगा तो सच्ची गीता भी सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, जिसके ऊपर शिव शंकर भोलेनाथ की छाप पड़ी हुई है। और
बाबा ये गैन बतावत है, गैन पातु है चांदा पे गैन बतावत है,
चंद्रमा पे जो ग्रहण पड़ता है, सूर्य पे जो ग्रहण पड़ता है, तो पूछना क्या चाहते हैं आप? पड़ता है ग्रहण? कहते हैं कि सूर्य के ऊपर ग्रहण पड़ता है, लेकिन सूर्य तो आपका गोला है, सूर्य जो है वो आपका गोला है, वो अंधेरे में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। वास्तव में सूर्य एक तरफ है
क्या,
और बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी एक तरफ होती है, तो पृथ्वीवासी जो है उनको चंद्रमा बीच में आ जाने के कारण जहाँ छाया पड़ती है चंद्रमा की, उनको दिखाई नहीं पड़ता सूर्य, खुद को दिखाई नहीं पड़ता है, कहते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। ऐसे ही ये यहाँ की हालत है, जो राम वाली आत्मा है उसको समझते हैं ये विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, ज्ञान सूर्य वाली आत्मा को, लेकिन खुद अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्योरिटी क्या चीज होती है। इसलिए कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगा, चंद्रमा को तो ग्रहण लगता है सच्चाई में, लेकिन सूर्य को ग्रहण नहीं लगता, चंद्रमा को ग्रहण तब लगता है मालूम है? सूर्य एक तरफ, पृथ्वी बीच में और चंद्रमा एक तरफ, तो सूर्य का जो पृथ्वी के ऊपर प्रकाश पड़ता है वो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा डाल देता है क्या? तो चंद्रमा के ऊपर अंधेरा आया आया ना, वो तो चंद्रमा अंधेरे में आ गया, बाकी सूर्य कभी अंधेरे में नहीं आता। ऐसे ही है ज्ञान चंद्रमा की बात है।
बाबा बेसिक वाले हम उनको बुलाते हैं दोबारा कि बेसिक वाले दोबारा हमें बुलाते हैं कि आओ और हमारी मुरली सुनो।
तुम्हारी मुरली सुने?
हाँ,
तुम्हारी मुरली थर्ड क्लास है मुरली,
कहते हैं जब
मुरली सुनो सुनो माउंट आबू छपी हुई मुरली का वो पत्ता ले जाओ जिसमें बाबा ने बताया है कि जो कागज की मुरली सुनते सुनाते हैं वो थर्ड क्लास, और टैप रिकॉर्डर में जो सुनाते हैं वो सेकेंड क्लास, और सन्मुख मुख से सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास, वो मुरली उनको सुनाओ।
अगर तुम ब्रह्मा को माँ बताती हो तुम्हारी माँ ने
सुनो, तो पहले एक बात को जवाब तो दे दो उनको, उनको को देखो मुरली में क्या लिखा है, बहन जी इसका अर्थ बताओ।
तो वो समझा नहीं पाती है,
समझा क्यों नहीं पाती? उनको बताओ कि तुम थर्ड क्लास मुरली पढ़ रहे हो, मुरली के पत्ते पढ़ रहे हो, कागज के पत्ते, ये थर्ड क्लास है और हमको तो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास मार मिलता है, सन्मुख मुरली मिल रही है, तो हम तुम्हारे ये थर्ड क्लास क्यों मार लेंगे? अभी तो थर्ड क्लास ट्रेन में भी खत्म कर दिया।
कहते बाबा जब तुम्हारी माँ ने आना बंद नहीं किया है तो तुम क्यों बंद कर रही हो? तुम आती जाती हो,
माँ से बरसा थोड़ी मिलता है,
बाप से मिलता है,
बरसा तो बाप से मिलता है, माँ भी तो बरसे के वो बाप के मस्तक पे रह
जाता है। जहाँ माँ जाती है तो वहाँ बच्चे भी चले जाते हैं, तो तुम्हारा
माँ ज्ञान चंद्रमा शंकर के मस्तक विराजमान है ना, वो तो वहाँ जाती है, ये तो विराजमान कैसे?
बाबा हमको नहीं जाना चाहिए ना,
कहाँ
बेसिक में?
बेसिक वो बुलाते हैं तो जाओ, जाओगे तो कुछ ना कुछ सुना होगे ही।
सेवा अर्थ जाने
जब लौकिक ज्ञान में आए थे, लौकिक ज्ञान में लौकिक से जब अलौकिक में बीके में आए थे तो क्या आपने परिवार वालों को छोड़ दिया था?
नहीं,
नहीं छोड़ा था ना, तो अब यहाँ अलौकिक परिवार वालों को छोड़ दे? अगर वो बुलाते हैं तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते होंगे, छोटे आदमी को तो कभी बुलाते ही नहीं, क्या तो बड़ा आदमी समझ के बुलाते हैं तो तुम समझ जाओ ये पैसे वैसे के चक्कर में हमको बुला रहे हो, अंदर से समझ लो ये हमको मुंह सुने के चक्कर में, तुम वहाँ इसलिए जाओ कि हम दो चार हाथ में निकाल लेंगे, दो चार हीरे इनके उठा के ले आएंगे, वो अपनी चालाकी दिखाए तो अपनी चालाकी
दिखाओ,
जाओ लेकिन तो सेवा भी करते रहो, लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि हमारे दो चार स्टूडेंट को उन्होंने तोड़ लिया तो फिर गेट आउट जरूर होता है,
फिर भागेंगे एक दो का पकड़ लिया।
हाँ
उस दिन गए थे ना तो कह रही थी कि थोड़ी सेवा करने
सेवा करने आ जा रहा
तो उन्होंने मुरली की गई तो मुरली सुनाओ तो वो बाबा मुरली में बाबा कोई बात सब
पॉइंट आ गया
समझा दिया हमने, नहीं नहीं तुम प्रजापिता कोई ब्रह्मा को कहते हैं, प्रजापिता कोई अलग नहीं है, फिर उन्हें हमने समझाया तो हाँ कह रही हो चलो किसी दिन बाद में समझाना,
ठीक है हम सेवा करेंगे, माने उनका ना सबके सामने हमको बेइज्जती मत करो, हमको अकेले
समझाना, तो कह
रही थी वैसे गुरु देवान तो बहुत होता है और सबके सामने उनको समझाओ उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो सबके सामने ना बेइज्जती करो।
बाबा ये मुरली में गाने किसने मना किए
है?
मुरली में जो गाने चलाते हैं शुरुआत में उसकी आपने मना किए मुरलियों में?
क्यों बाबा ने ये कहा है ये टैप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है, ये टैप रिकॉर्डर बहुत अच्छी चीज है, किसलिए अच्छी चीज है? किसलिए बताया? इसलिए बताया कि ये बाप की वाणी एक्यूरेट सुनाता है, क्या एक्यूरेट वाणी सुनाएगा, तो इसलिए हर बच्चे को अपने पास वो टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए, लेकिन किस लिए रखना चाहिए? बाबा की वाणी सुनने के लिए, किसी मुरली ने ये कहा कि गीत गाने के लिए टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए? ये नहीं कहा, हाँ ये कहा कभी अवस्था खराब होती है, तो तुम्हारी अवस्था खराब होती हो तो अपने गीत बजाते रहा करो डबाडम डबाडम, अब एडवांस में आने के बाद अवस्था क्यों खराब हो? एडवांस में आने के बाद अवस्था एडवांस रहनी चाहिए या खराब होनी चाहिए? एडवांस रहनी चाहिए, संगम युग है ही, मौजों का युग या खराब अवस्था होने का युग? मौजों का युग है, स्वर्ग की शूटिंग करने का युग है, खराब होती रहती है क्या? नहीं खराब होती, क्यों बीती क्यों याद आते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं कि विनाश सामने खड़ा है, दुनिया को समझाते हैं ना, क्या समझाते हैं? महामारी महाभारत युद्ध है, सामने खड़ा हुआ है, खून खराब होने वाला है, अब दूसरी तरफ ढोल मजीरा बजाते रहते हैं तो लोगों को समझ में आएगा कि एक तरफ तो भी कहते हैं विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ ये जान मजीरा और ढोल मजीरा बजाने में और गीत गाने में और डांस करने में लगे हुए, तो उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, तो दुनिया वालों को विश्वास पैदा करना है या अविश्वास ही बनाना है? विश्वास पैदा करना चाहिए, तो गीत गाना चाहिए कि नहीं? अगर गाना ही है तो कान में लगा लो, अभी तो सुनते रहो अंदर
अंदर। मुरलियों बोला है जो आपने के माउंट आबू जो महल वगैरह बन रहे हैं वो हम लोग हम बच्चों के लिए बन रहे हैं जिनको दोनों ज्ञान मिल गए हैं, जिनको दोनों माँ और बाप का दोनों का ज्ञान मिल गया है उन लोगों के लिए भवन बन रहे हैं माउंट आबू में, तो हम लोग जैसे लास्ट में जाएंगे तो वो लोग कहाँ पे जाएंगे फिर?
वो कहाँ तो क्या उसको माता की वाणी सुनते हैं नहीं सुनते? कब से आए ज्ञान एडवांस में? कब से आए?
दो साल
हो गए और बेसिक में
पाँच छह साल
तो तुम अभ्यतवाणी नहीं सुनते हो लगता है, अभ्यतवाणी में बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, ताला नहीं लगाने देंगे। इतनी इमरजेंसी होगी जैसे वारंट निकलता है, किसी का वारंट निकलता है तो वो तो अपने सामान वामान संभालता है, बाकड़ा होता है
बाबा।
ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा मामला जावेगा, तुम केस को बड़े कोर्ट में ले जावेंगे, तो जब बड़े कोर्ट में ले जाएंगे और सच्चाई बाहर निकलेगी तब क्या होगा, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना, वो तो छोड़कर पहले ही भाग जाएंगे चोर चकार। तो जैसे चोर डकैत होते हैं ना, किसी के घर पर रात में जाके कब्जा करके बैठ जाते हैं, ऐसे चोर चकार है, विदेशी है, विधर्मी आत्मा है, जो माउंट आबू जाके कब्जा करके बैठी है, वो तो हमारे आबू अब्बा का घर है। जब टाइम आएगा आप खड़े होंगे,
कहाँ पे चले जाएंगे ये लोग, कहाँ पे चले जाएंगे,
उन्होंने अपने जहाँ जहाँ धर्मखंड अपने फॉलोअर्स बनाए होंगे, भेड़ बकरियों के देश में चले जाएंगे बिना सी धर्मखंडों। जो बाप की ग्लानी कराने वाले हैं, जो बाप की ग्लानी कराने वाले हैं, ज्ञान के विपरीत चलने वाले हैं, उनके लिए मुरली ने क्या बोला है, सदगुरु निंदा ठौर न पावे, तो माउंट आबू उनको ठौर मिलेगा विनाश के टाइम पर नहीं मिलेगा। वो कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी मेहरबानियां अटारियां बनाते चले जाए, अपने नाम रजिस्ट्रेशन करा ले ब्रह्म कुमारी, लेकिन जब टाइम आएगा तो उनको एक दो तीन होना पड़ेगा।
इस भाई को उन ब्रह्मा कुमारी की ज्यादा चिंता होती है, वो जाएंगे क्या,
थोड़ा
लगाव ज्यादा आया ब्रह्मा कुमारी
में,
थोड़ा लगाव लगा हुआ होता है तो मंडा ना मेरी कोई भी चीज वो चार अवस्थाओं से पसार होती है इसको, तो आपने बोला है कि जैसे बेसिक वालों की अभी क्या अवस्था है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है क्योंकि उनकी भी तमो प्रधान अवस्था है, तो एडवांस वालों की भी तमो प्रधान अवस्था होती है। जब अभी एडवांस वालों की तमो प्रधान अवस्था चल रही है क्योंकि जो शुरुआत का जो पीरियड होता है
अभी तो कम चल रही है, अभी तो बेसिक वालों में जितना रौरव नरक नहीं बना है उससे जास्ती रौरव नगर नरक जो है एडवांस वाले बनाएंगे।
तो बाबा आपने कहा जब समो प्रधान अवस्था होगी तो एकदम पूरी तरह दुर्गति होगी, दुर्गति के बाद फिर सदगति होगी, तो बाबा फिर दुर्गति बोला किस तरह
आदमी जब मरता है तो घावड़े आते कि नहीं, तो चोरी कि नहीं सदगति उसे कहेंगे कि आराम से इच्छा मृत्यु इच्छा की और शरीर छोड़ दिया, तो जो दुर्गति होती है तब ही सुदगति होती है, जब तक कोई चीज नीचे नहीं जाएगी तब तक उछल के ऊपर भी नहीं आएगी, जितना नीचे जाएगी उतना ऊपर भी आएगी, तो दुर्गति और सदगति सुख और दुख ये तो चलता ही रहता है और ये चलना ही है, तो दुर्गति होगी लेकिन दुर्गति के साथ फिर सदगति भी जुड़ी हुई है। एक सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है, विष्णु बन जाता है, जब एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है तो ब्राह्मण एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु जैसे नहीं बन सकते, वो भी बनेंगे।
तो बाबा जैसे जैसे वो हमारी दुर्गति होगी
माना शरीर सड़ते जा रहे हैं और आत्मा पावरफुल होती जा रही है, तो शरीर में ढेर सारी भले बीमारियां आती रहे लेकिन आत्मा में इतनी पावर हो, पावर भरी हुई हो कि हमें जो काम करना है सो हम कर लेंगे,
उसमें अनिश्चय भी आ सकता
है। जो आत्मा निकल जाती है शरीर पड़ा रह जाता है तो मतलब होते हैं तो वो आत्मा भरी रहती है वहीं पे या तुरंत ही मतलब जन्म ले लेती है।
मुरली में क्या बोला है, मुरली में जो बोला आत्मा शरीर छोड़ती है और धक्त से जाके गर्भ में प्रवेश कर जाती है।
आपने जो बोला था जो फिल्म बनता है जो पेट के अंदर तो चार पाँच महीने के बाद
हमने क्या बोला है, कोई भी माता है जिन्होंने बच्चा पैदा किया उनसे पूछ लो, कानों में बात कर लो उनसे कि तीन चार महीने तक उनको कुछ अनुभव होता है क्या, भारीपन अनुभव होगा लेकिन हरकत नहीं होती है,
उससे पहले उसमें मतलब ठीक नहीं होता,
हरकत नहीं होती है, आत्मा होती नहीं तो हरकत कहाँ से होगी,
ऐसे
रखा रहे
जो
जोड़े
निकलेंगे वो एक ही धर्म के होंगे,
हाँ जो जोड़े जो निकलेंगे वो एक ही धर्म के होंगे, दूसरे धर्म के होंगे, कौन से धर्म की बात कर रहे हैं?
ये अभी धर्म में जो निर्वाण पार्टी है ना, ये जोड़े निकले हैं, वो एक ही धर्म के होंगे।
जो जोड़े निकले हैं अभी, जो निकले हैं ज्ञान में निकले हैं वो नहीं, बाबा ने कहा आपने के लगे ये आखिरी जन्म के जो जोड़े हैं वो सतयुग में नहीं रहेंगे।
नहीं सतयुग में नहीं, अब
तो नहीं रहेंगे मतलब एक धर्म नहीं है, हो भी सकते हैं कोई और नहीं भी हो सकते। आखिरी जन्म में तो सब बदल जाता है, क्या जब प्रजापिता का ही बदल जाता है, प्रजापिता को जगदम्बा मिलती है, लक्ष्मी तो नहीं मिलती, और ब्रह्मा बाबा को यशोदा माता मिलती है, जो कुछ भी जिनकी पुत्र में ज्ञान बैठता ही नहीं था, और सरस्वती को संगी साथी बनाना पड़ा, तो बदल गया ना।
दोनों चल रहे ज्ञान में, तो आप संस्कार से मिल जाएंगे एंड में, मतलब
नहीं सत्युग में जो भी नई दुनिया बनेगी उस नई दुनिया में सब बदल जाएंगे।
जो आज मतलब अपने जो धर्म पिता है, जो धर्म पिता है जैसे इब्राहिम बौद्ध त्राष्ट्र वगैरह, तो अभी तो इनको तो संदेश भी नहीं मिला है, तो जब इनको संदेश मिलेगा क्या ये धर्म पिता जितने भी हैं जो द्वापर युग में अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, तो शरीर छोड़कर के बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ेंगे, या कैसे उनको संदेश मिलेगा?
बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़वाने के लिए जबरदस्ती करेंगे,
बीज रूप आत्मा
उनमें प्रवेश करेंगे,
तो ये मतलब अपना आत्मा पहुंचेंगे।
जो अष्टदेव है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, या धर्म पिता ही ज्यादा पावरफुल होंगे?
अष्टदेव
ज्यादा पावरफुल होंगे,
फिर उनको पढ़ाई पढ़वाएंगे।
हाँ जी,
फिर ये शरीर छोड़ेंगे।
हाँ जी, छोड़ेंगे।
शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या बाप के पास आएंगे?
एक बार माथा झुकाने के लिए जरूर आना पड़े,
एक बार
वो आएंगे, तब तो उनकी फॉलोअर्स प्रजा भी आएगी। वो फॉलोअर्स प्रजा जो करोड़ों की तादाद में है, क्राइस्ट की प्रजा 150 करोड़ के लगभग ऊपर है, तो सारी प्रजा कैसे झुकेगी?
जब उनका
धर्म पिता झुकेगा तो उनकी प्रजा भी झुकेगी, वो आएंगे तो उनकी प्रजा भी उनकी बुद्धि झुकेगी, सारी दुनिया एक बात को याद करेगी।
तो आपसे बाबा सम्मुख मिलेंगे वो प्रजा?
उनके सम्मुख मिले एक अलग बात होती है, आपस में बात नहीं करनी है। सन्मुख मिलना दो तरह से होता है, एक होता है स्थूल मुख के सन्मुख मिल रहे हैं, और एक होता है मुख के सन्मुख नहीं मिल रहे हैं लेकिन अंदर से सन्मुख हो गए, विमुख नहीं है। क्या उनको ऐसे होते हैं सामने बैठे होते हैं, सन्मुख मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से गंध भरा हुआ
है,
बाहर निकलेंगे तो विरोध करने लग पड़ेंगे। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? तो विमुख हुए। तो ऐसे ही जो धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं वो अंदर से सन्मुख हो जाएंगे,
शरीर से नहीं मिले, शरीर से नहीं मिल पाएंगे,
शरीर से
आपसे बाबा
वो भी अगर शरीर से मिल जाए और आप ही शरीर से मिल जाए फिर देवता कौन बनेगा? आपकी कोई तो खासियत होनी चाहिए।
वो धर्म पिता स्वयं अपने रथ से नहीं मिलेंगे
हैं?
वो धर्म पिता अपने रथ से नहीं मिलेंगे,
एक बार आएंगे लेकिन मन के अंदर से विमुख रहेंगे, दूसरी बात पूरी बैठेगी नहीं। वंडरफुल, जैसे गीता में वो संस्कृत गीता में लिखा है ना, आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, देख तो आए कम से कम कौन है जो कमाल हम नहीं करके दिखा सके है? वो हम तो स्वर स्थापन नहीं कर सके इस दुनिया में, और इन्होंने तो दुनिया में पैराडाइज स्थापन कर दिया, जन्नत बना दी, 7 मंडल से तो मनुष्यों को बनाए हुए हैं, और 8वां मंडल तो स्वर्ग का मंडल बाप आकर के बनाते हैं। तो ऐसे बाप को देखना तो जाके कम से कम
देखने का भाव होगा।
यहाँ भी तो ऐसे बहुत से आते हैं भगत, आते कि नहीं? उनसे कहो तुम बाप के घर में जाके पहले पैदा हो, है 9 महीने जैसे बच्चा पकता है गर्भ में, ऐसे ही 9 दिन वहां जाकर के भट्टी में पको बाप के घर में जाके, तब तो बाप के बच्चे बनोगे, सो नहीं जाए देख ले जाके, तो भगत हो गए ना दर्शन करने वाले।
बाबा
है पावर होगी मन बुद्धि कितनी एकाग्रता होगी मन बुद्धि को यादव कहा जाता है। मन बुद्धि अगर एक जगह एक घंटे एकाग्र बनी रहे क्या तो प्रवेश करने की पावर होगी कि नहीं एक घंटे में तो बुद्धि को क्या से क्या बना दिया जाए ठीक
बाबा जो बाबा चल रहे हैं जो कागज है सुनो अरे
शिव बाबा साथ में रहेगा अलग को मिला अल्लाह बे को मिली बादशाह बे माना ब्रह्म अलग माना प्रजापिता तो उसको अल्लाह मिल गया उसको क्या परवाह दुनिया की मिले मिले न मिले परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं क्या ज्यादा बुद्धि किसमें होती है पुरुषों में होती है कि कन्या माता ज्यादा बुद्धि किसमें होती है पुरुषों में बुद्धि ज्यादा होती है ज्ञान ज्यादा गहराई से समझ लेते हैं पकड़ लेते हैं और कन्या माता गहराई से नहीं पकड़ पाती क्योंकि बच्चे पैदा करने में सारी बुद्धि खप जाती इसलिए वो हिलाने वाले हिलाते हैं तो हिल जाती ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है ना भाइयों में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है कन्या माता माताओं में ज्यादा श्रद्धा विश्वास होता है इसलिए उनको हिलाना आसान होता है झूठी झूठी बातें सुनाई और सुना के उनको बरा लाएगी ड्रेसिंग में देखो लगे देशों में कितनी अच्छी अच्छी माताएं हैं ज्ञानी माताएं हैं ज्ञान सुनाने वाली हैं लेकिन तुम उनको ज्ञान सुना वाला कि वो बिल्कुल नहीं सुने तो अंधश्रद्धा वाली हो नहीं ठग बन के कर लेते हैं बुद्धि को उनको मोड़ लेते ऐसे ही है।
बाबा अभी जो मुरली चली थी तो उसमें आपने बोला कि गरीबों के घर में मच्छर और मक्खी बहुत होते हैं अमीरों के घर में देखने को नहीं मिलते और एक्यूरेट ड्रामा बना बनाया है तो 5000 वर्ष बाद फिर हमारी फिर यही स्थिति फिर हो जाएगी
कैसी स्थिति हो जाएगी
जैसे हम अभी
नालों के किनारे प्लास्टिक के तंबू डाल करके हम मक्खी मच्छरों की देश में पले ऐसी स्थिति हो जाएगी
फिर मतलब 5000
वर्ष नहीं बाबा के बच्चों में भी हर तरह के हैं
क्योंकि
कोई ऊंचा पुरुषार्थ करने वाले भी हैं कोई फोर्थ क्लास प्रजा का पुरुषार्थ करने वाले हैं क्या लेकिन बाबा ने कहा बाबा के बच्चों में से ऐसा एक भी नहीं है जिसको भीख मांगनी पड़े तरह रोटी की पेट भरने के लिए क्या भले प्रजापति की भी आत्माएं होंगी तो भी बाबा के बच्चे पेट में कमाई करने के लिए सशक्त होंगे वो कोई के सामने भीख नहीं मांगेंगे फिर भी कुछ न कुछ अपने पैरों खड़े हुए तो आखिरी जन्म में भी कोई न कोई बच्चे हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो सूर्यवंश में भी आएंगे वहां भी साहूकार बनेंगे फर्स्ट क्लास और इस आखिरी जन्म में भी बाप की जो अवस्था है रोडपति बनने की गली गली बोलने की जो संचर में थी क्या बैगर टू प्रिंस उस बैगर प्रिंस बैगर टू प्रिंस बनने वाले से उनकी बड़ी अवस्था होगी समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट भी हो क्योंकि उन्होंने बाप को प्रैक्टिकल में सहयोग दिया बाप ये कैसा बाप है अवगण वरदानी क्या है उनके लिए गीत गाए हुए हैं है खुद कहा देते हैं और बच्चों को क्या देते हैं सब कुछ देते हैं
और मैं डेली मुरली सुनता हूँ और डेली सवेरा योग करता हूँ और मेरी बुद्धि गृति चली जा रही है दयाल मुरली डेली रेगुलर सुनता हूँ और रेगुलर डेली योग करता हूँ सुबह 3 बजे से बुद्धि गृति चली जा रही है नीचे
क्या होता है
कोई ध्यान ही ना रहा बुद्धि में
बुद्धि इधर उधर भाग जाती है
कभी रहती ना इधर उधर कभी ना बुद्धि
मैंने बुद्धि में ज्ञान नहीं टिकता ज्ञान नहीं टिकता कोई कपड़ा ज्यादा मैला हो जाता है ना बहुत मैला हो जाता है ना तो उसको ज्यादा ज्ञान जल की जरूरत पड़ती है क्या इसलिए हिम्मत मत हारो लगातार चलते रहो चलते रहो चलते रहो बुद्धि शुद्ध हो
जाएगी। मुरली में जो बोला है आहू रोड पे लेके माउंट आबू की लाइन लगेगी, वो कौन से बच्चे होंगे?
वो कौन से बच्चे होंगे? और दुनिया सारी दुनिया होगी, दर्शन करने वाले कोई थोड़े होंगे क्या? भगत कम होंगे? अरे बाप के वारसदार भी है, बाप के प्रजा भी है, और बाप के दास दासी भी है बनने वाले, और बाप के चंडाल बनने वाले बच्चे भी है। तो जो फोर्थ क्लास प्रजा होगी उसकी संख्या कम होगी ज्यादा होगी? ज्यादा होगी ना। तो जो ज्यादा संख्या होगी 9 लाख की संख्या होगी तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे? अब भगत तो बहुत होते हैं।
मेरा ये है कि 9 लाख जाएंगे या दर्शन करने सारी प्रजा?
दर्शन करने वाले को भगत नहीं कहते? जो दर्शन करने जाएंगे पूरा निश्चय नहीं होगा
बाबा,
लेकिन देख तो आए कम से कम, ऐसे नहीं होंगे। वो जाएंगे लेकिन वो भट्टी अच्छी नहीं करेंगे
बाबा। ये फिर भाई जो कहते सब त्याग का साधु सन्यासी सत्म हुए अभाव है, अभाव है प्योर बाप को बेच रहो तुम, तब देखो क्या बढ़िया मिलते बैठा है। और जो कहते ऐसे गुरुदत्त चाहते थे तो दूसरे सुनाने की जरूरत ना है।
तो भैंस आई है और हमारा सत्संग असली बाप का सत्संग है, जयपुर देव वाले ऐसे बोलते हैं।
ऐसा बाप का सत्संग असली
जयपुर देव वाले कहते हैं इनसे भाव से कि जो ओम शांति वाला जो आप जिस ज्ञान में चलते हैं वो तो ऐसा ही सत्संग है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारा सत्संग है वो असली बाप का है।
तो वहाँ बाप, वहाँ जय गुरुदेव बाप बना बैठा है ना, और ब्रह्म कुमारी के पास तो बाप है ही नहीं। तो कहते ज्यादा जहाँ 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 ज्यादा आते हैं वहाँ बाप होता है, और जहाँ थोड़े आते हैं वहाँ बाप नहीं होता। उनसे बताओ जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? नई दुनिया में थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? जो नई दुनिया में थोड़े होंगे या थोड़े होंगे तो जो जो नई दुनिया बनाने वाला बाप होगा वो थोड़े बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता होगा कि ढेरों को पढ़ाता होगा?
तो बाबा बोल नहीं सकते राम राम को चलते थे बोल के पिता ने राम ने पिता राम तो दो ही भेजा आते हैं मौज में राम लक्ष्मण दो ही रहते हैं बराबर।
उनका सेंस ये कहेगा जो रावण और राम और रावण का युद्ध हुआ था तो रावण की तो बहुत सेना थी और राम के साथ कौन? राम थे और लक्ष्मण दो भाई तो थे, दो ही तो थे,
दो ही थे।
तो वो कह रहे हैं कि जो उनकी ज्यादा संख्या है तो वो रावण हुए, हमारी कम संख्या है तो हम राम के साथ।
तुमने सही जवाब दिया, कम से कम जीतेगा।
ब्रह्मा कन्या को
ऊंचा
पद
बन जाता है तो कन्या उसका ऊंचा पद बन जाता है।
मतलब बाबा ने बुद्धि में कहा था कि आप कहते जो कन्या होती है तो वो ब्राह्मण ब्याह के ले जाता है तो कन्या नीचे कुल की होती है, ब्राह्मण नीचे कुल का होता है,
ठीक है?
तो कन्या को वो ले जाता है तो कन्या उसके घर में रहती है तो वो अपना नाम ऊंचा कर लेती है।
ब्राह्मण के साथ पहुंच गई तो ऊंचा ब्राह्मण हो गई। जैसे मुरली में बोला है कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी, तो सूर्यवंशी कृष्ण तो राधा जी जा ना सके वो तो एक ही हो जाएगी, इसलिए चंद्रवंशी राधा को कृष्ण के यहाँ देखभाल करने के लिए आना पड़ता है, और जब आ जाती है और सगाई हो जाती है स्वयंवर हो जाता है तो चंद्रवंशी बदल करके क्या हो जाती है? सूर्यवंशी हो जाती है। वही परंपरा दुनिया में चलती है
है?
और क्या
बाबा, भक्ति मार्ग में ये भोले बाबा को बना दिया भक्तों ने, दाढ़ी मुझ दिखाते हैं, पूरे डाकू बना दिया।
अरे बाबा तुम तो डाकू ही बोला, बाबा तुमने बोला है कि भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे बनाया जैसे रावण, क्या
रावण
जैसे बनाते हैं, जैसे रावण का भयंकर चित्र बना देते हैं ऐसे रावण बना दिया, तो वो रावण का बाप नहीं है क्या? असुरों का बाप नहीं है? वो असुरों का भी बाप है, असुरों को भी वरदान देता है और देवताओं को भी वरदान देता है, देवताओं का भी बाप, वो सारे विश्व का बाप है। सारे विश्व में सिर्फ देवताएं ही है या असुर भी है? तो असुरों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप, जगत पिता है।
जब
सूक्ष्म है तो दुनिया में जड़ मंदिर कहाँ से आ गए, उनकी मूर्तियाँ कहाँ से आ गई, और सबसे ज्यादा पूजा क्यों होती है, पूछो उनसे।
वैसे
तो सब ठीक है ज्ञान, सब ज्ञान तो सब ठीक है, मान तो मतलब समझता रहे, बुराई भी नहीं करते,
फिर एक दिन और किताब कितने से पढ़ी की हाँ पढ़ी तो कुछ पढ़ी कुछ नहीं पढ़ी, समझ में नहीं आया कि हाँ आया तो गई बहन के घर पे गई समझा किसी को तो बोली नहीं हमें तो बस ब्रह्म को हम तैयार करते हमें ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए
जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तो इस्लाम धर्म का पक्का है तो दूसरों की बात थोड़ी सुने।
मेरे को भाई भी अच्छा है, बोल रहा था भाई पढ़ता था कि वो भाई भी अच्छा है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा भाई है, खूब पढ़ा लिखा है आपके बारे में, अच्छा भाई है, ज्ञान है, मतलब वो दूसरी मुर्गियों को।
क्रिश्चियन धर्म के 150 करोड़ है और उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, तो 150 करोड़ क्या सतयुग में आ जाएंगे, 150 करोड़ बाप का ज्ञान समझेंगे या क्राइस्ट तक ही सीमित रहेंगे, क्राइस्ट का ज्ञान समझेंगे या शिव बाबा का ज्ञान समझेंगे, 150 करोड़ क्राइस्ट का ज्ञान समझेंगे, अपने धर्म के पक्के।
उन लोगों से कहो कि जो कृष्ण राधा कृष्ण का जो जन्म होगा सतयुग में तो उसको कोई साकारी तो जन्म देंगे राधा कृष्ण को भी, निराकार शिव ज्योतिर्विंद तो राधा कृष्ण को जन्म देगा नहीं, तो वो लोग कहते हैं अच्छा तो वो कौन है, आपको ये बताइए कि गेहूँ कहाँ से आया और मतलब गेहूँ को बीजने वाला गेहूँ कहाँ से आया, आप तो ये भी कहेंगे गेहूँ कहाँ से आया, मतलब जो गेहूँ का बीज होगा गेहूँ के बीज में से तो गेहूँ का बीज निकलेगा, तो जरूर वो साकार में जन्म लेते हैं तो जरूर कोई साकारी तो जन्म देने वाला होगा, तो अगर अच्छा ठीक है तुम्हें जो इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ा रहा है तो मुझसे हमें तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी थी, हमें तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़नी जिससे आप पढ़ा, आप इंजीनियर की पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ो उनसे,
उनको कुछ बोलना है उन्हें बोलने दो, जो सुनना चाहती है उनको सुनाओ, जो नहीं सुनना चाहती है उनको नहीं सुनाना चाहिए, जिसको प्यास लगी हो उसको पानी पिलाओ, जिसको भूख लगी हो उसको खाना खिलाओ, जिसको भूख ही नहीं है प्यास ही नहीं है और जबरदस्ती खिलाते हो तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो चिंता करेगा ग्लानी करेगा, ये ऐसे उल्टी उल्टी बातें तुम्हारी सुनाएगा, तुम सीधी करके सुनाओ तो वो उल्टी करके सुनाएगा, इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञान सुनाने से फायदा नहीं।
कहते मुरली का भी फोन रखा हुआ है फिर जब पता मतलब साकार में तो बच्चे भी साकार होने चाहिए ना कि सूक्ष्म बता नहीं, मुरली का फोन देखो वो तो बात सही है, अरे वो है तो दादी, तो दादी प्रजापिता है ब्रह्म बाबा है दादी है, तो दादी है कहने का मैं प्रवेश करके तो बोल तो बाबा
मैंने शिव हम हो गया सब में प्रवेश हो गया, दादी में प्रवेश होगा तो दीदियों में भी प्रवेश होना शुरू कर देगा, तो सर्वव्यापी हो गया,
बाबा हम दोनों पति पत्नी ध्यान में चल रहे हैं तो अपने यहाँ गीता पाठशाला खोल सकते हैं क्या, डायरेक्शन है
बेसिक कितने साल चले,
मैं तो डायरेक्ट आया हूँ, बाकी हमारी युगल है वो 8 साल चली,
युगल 8 साल चली,
अच्छा
तो आप डायरेक्ट आ गए और युगल 8 साल चली, लेकिन आप पक्के हो जाओ, आपको कहीं कहीं ऐसा होता है कि माताएं तो एडवांस में पक्की बनी रहती हैं, थोड़े दिन भाई लोग चलते हैं फिर उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, तो थोड़ा और पक्के मजबूत हो जाओ है, हाँ गीता पाठशाला तो बाबा तो सभी को परमिशन दे देते हैं, वो भी युगल है अगर कोई परमिशन मांगते हैं गीता पाठशाला खोलने की तो बाबा तो कहते हैं भट्टी कर ली है युगल है हिंदी जानते हैं तो भले गीता पाठशाला खोले, लेकिन थोड़े मजबूत हो जाएंगे तो और अच्छा है,
बाबा एक कन्या है ना वो भट्टी तो कर ली है उनने और वो कहती है मेरे को यहाँ नहीं अच्छा लगता है और उनके पापा तो चलते नहीं है दादी चलते नहीं है वो विरोध करते हैं वो ये होना चाहती है
बाबा के ज्ञान पसंद नहीं करती
नहीं
ज्ञान पसंद नहीं करती शादी करना चाहती है
नहीं कन्या तो ज्ञान में चलना चाहती है ज्ञान पसंद नहीं करती है सिलेंडर होना चाहती है
सिलेंडर होना चाहती है तो बाप क्या कहता है
बाप तो ज्ञान सुनने के लिए तैयार भी नहीं है उनको तो विरोध करते हैं
अच्छा अम्मा क्या कहती है
विरोध करती है
अम्मा भी विरोध करती
है
बाप भी विरोध करता है जब तक 18 साल की हो तब तक के लिए गुप्त रहे अंदर अंदर ज्ञान में चलती रहे जब 18 साल की हो जाए तभी अपना सर्टिफिकेट लेकर कोई माता के साथ चाहे जा चली जाए
अम्मा ने ये बच्ची की दादी को समझ
नहीं क्या अम्मा चलती नहीं है
दादी दादी को
दादी से क्या बच्चा अम्मा बाप का माना जाता है दादी का माना जाता
है अभी वो बच्ची 12-13 साल की है 13 साल की बच्ची करी है इनकी बेटी है और इनकी
बेटी है तो इनको हक है अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर निकाल दिया बच्चों के ऊपर माँ बाप दोनों का बराबर हक है क्या बल्कि बच्ची के ऊपर माँ का ज्यादा हक है क्योंकि बच्ची को बाप नहीं समझ सकता नौजवान होने के बाद बच्ची को माँ समझ सकती है इसलिए आप जब जाए तब सरेंडर करके आ जाइए
मुरली में तो बोला माँ बाप दोनों ही इस्लाम
नहीं मुरली में नहीं बोला है माँ बाप दोनों ही बोला मुरली में तो ये बोला है कि माँ या बाप की परमिशन चाहिए क्या परमिशन के बगैर नहीं रह सकते
माँ करके आ सकती
माँ की परमिशन होगी रख लेंगे कोर्ट के कागज में साइन कराएंगे
बाबा जैसे अभी अभी जो कन्या गई है ना तो वहाँ माँ जो है वहाँ इंचार्ज रहने हैं वो बताती है कि दोनों ही होने चाहिए अगर एक महीने
की अपनी सेफ्टी के लिए बताती है झगड़ा ना हो और झगड़े में पूरा पड़ना पड़े
तो वो जैसे कोई कन्या
बाबा नहीं बताता बाबा कहता है माँ या बाप में से कोई एक आ जाए सरेंडर करके चला जाए फिर उसके बाद कन्या में ताकत होगी तो अपने आप झगड़ेगी
कन्या कही अभी रह के आई एक महीना मम्मी मैं अभी दो तीन महीना 4-4 महीना रह के आऊंगी जब बाद में सरेंडर होगी कैसे रह सकती
हूँ विदेशी कन्या होती है ना वो पहले जा जा करके घरों को देखती है तब मैं टिक पाऊंगी नहीं टिक पाऊंगी फिर उसके बाद शादी कर लेती है विदेशी बनना है क्या ज्ञान बुद्धि में अगर बैठ जाए
ज्ञान तो बुद्धि में
रक्त से आगे बढ़ जाते
ज्ञान सुनती भी और सुनाती भी है
माँ का अगर निर्बंधन है पति विरोध नहीं करेगा तो फिर वो डंडा लेके पुलिस को लेके पहुंच जाए तो क्या करेंगे उसे परमिशन लेकर लिखा लो उनका मूड बढ़िया देख करके और कोर्ट में ले जाओ 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में उनसे लिखा लो कि हम हादसे में रहने के लिए जिंदगी में तुमको परमिशन देते हैं फिर बाबा रख लेंगे बच्चों की थोड़े ही अम्मा होती है बच्चों की थोड़े ही बाप हकदार होता है बाप के साथ एग्रीमेंट किया है कि बच्चों के साथ एग्रीमेंट किया है
पति
ना हो
सरेंडर
फिर तो स्वतंत्र है फिर कौन रोकने वाला है
फिर हो सकते हैं
हाँ बिल्कुल हो सकते
हैं किसी का परमिशन नहीं
हाँ कोई भी परमिशन का कारण नहीं पति का वो क्या कहते हैं डेथ सर्टिफिकेट चाहिए
ये खुली है ये क्लास करती है यहीं पे इनके जो है लॉ की जो पति है वो कहीं साधु संन्यासी हो गए हैं काफी पहले एक बेटा भी है
कितने साल से
ऐसे हो गए 8 साल
हो गए तो जो कोई सर्टिफिकेट ऐसा नहीं करवा लो कि 8 साल से वो गायब है
और ये इनकी सामर्थ्य नहीं है कैसे कहाँ से निकले ये इनकी सामर्थ्य नहीं है कैसे निकले
बाल बच्चे रुक रहे हैं
बच्चा भी नहीं रोक रहा है, बच्चा है एक लगा वो भी नहीं रोक रहा है
वो भी नहीं रोक रहा है फिर क्या बात
परमिशन
देखो 2 साल अगर पति पत्नी आपस में नहीं मिलते और उसका प्रूफ है कि 2 साल नहीं मिले तो डाइवोर्स मान लिया जाता है कोर्ट में तुम्हारे तो 8 साल हो गए
बेटा से भी स्वतंत्र है, बेटा भी अगर शादी कर लाओ ब्याह से तो फिर भी ना स्वतंत्र है,
हिम्मत नहीं है बेटा की,
थोड़ा बेटा लिख के देना पड़ेगा,
नहीं
बता दी के लिखा
कुछ नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते, कितने साल हो गए माता को विधवा हुए, कितने साल हो गए, 20 साल से चली छोड़ दिया,